इसको ये शंका नहीं होनी चाहिए कि यह देवकी को बचाने पर पड़ा हुआ है। कंस को यह समझ में आना चाहिए था कि बेचारा मुझे पाप से बचाना चाहता है और मेरे हित के लिए ज्यादा चिंता कर रहा है। यह वसुदेव जी को नाटक करना था, वहां ऐसे बोलना था कि कंस को विश्वास हो कि मेरी भलाई चाहता है, यह देवकी मरे या जिए इस पर कोई इसकी चिंता नहीं, ये कहना चाहता था। इसीलिए प्रसन्न बदनाम भोजन, प्रसन्न बदनाम भोजन। वसुदेव जी का मुख तो ऐसे ही परम सुंदर है, जो भगवान के पिता हैं तो भगवान जैसे ही सुंदर हैं, और भी वे मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाए तो उनका मुख कमल और खिल गया, अम्भोज की तरह, कमल की तरह खिल गया सुंदर मुख, और ऊपर से हंसने लगे। लगता था कि देवकी के मरने जीने की इनको कोई चिंता नहीं है, लेकिन कंस पर वे हंस रहे थे, ये दिखा रहे थे कि कंस जी एक बिल्कुल सरल बात के लिए आप इतनी चिंता कर रहे हैं। तो हंसते हुए कहे तो कंस को विश्वास होने लगा कि अवश्य मेरी भलाई का ये चिंता कर रहे हैं, अपने पत्नी की जान बचाने की इनको चिंता नहीं। किसी विषम परिस्थिति में मनुष्य को ऐसे आचरण करना चाहिए, हृदय में दुख है लेकिन दुख को छिपा लिए और हंसने लगे, प्रसन्न हो गए। वो दशा देवकी की थी, वहां प्रसन्न नहीं होने का मौका था, लेकिन उस राक्षस को प्रसन्न करने के लिए, समझाने के लिए वे बाहरी प्रसन्नता किए, अपने चेहरे को प्रसन्न किए और हंसते हुए कहे, उन्होंने कहा कि मैं आपसे एक बात पूछूं। कंस ने कहा कि क्या कभी ऐसा अवसर आया है कि मैं आपको कुछ पूछने का अवसर नहीं दिया हूं, पूछिए। वसुदेव जी को बहुत आश्वासन हुआ, तो वे कहते हैं न यस्यास्ते भयम सौम्य जद्वै जद्वा गाहा शरीरिणी, जैसा अशरीरिणी वाक आह, कुछ पाठ भेद भी है, जैसा अशरीरिणी वाक बोलने वाला दिखाई नहीं दिया, अर्थात आकाशवाणी ने जैसा कहा है उसके अनुसार अस्याह ते भयम न, इस देवकी से आपको भय नहीं है ना, ये देवकी आपका वध नहीं करेगी ना, देवकी से तो आपको भय है नहीं। वो कहा हाँ ठीक कहते, देवकी से भय नहीं है, देवकी के पुत्रों से भय है। तब कहते पुत्रान समर्पय जतस्ते भयमुत्थितम, मैं पुत्रों को दे दूंगा आपको, जन्म लेते ही जिनसे आपको भय है उन पुत्रों को मैं सौंप दूंगा, और आप इसके बाद चाहे मारिए चाहे छोड़िए, चाहे अपना भांजा समझ करके प्यार कीजिए या अपना काल समझ करके मार डालिए, जो करना हो कीजिए, मैं इसके पुत्रों को सौंप दूंगा। जब इससे भय नहीं है तब मैं कह रहा हूं, अगर आपको अच्छा लगे तब इसको छोड़िए, और नहीं आपको यदि लग रहा हो कि देवकी को मारना जरूरी है तो मैं कह रहा हूं कि मार डालिए इसको। लेकिन व्यर्थ है ये मारना होगा आपके लिए, मैं कह रहा हूं। कंस स्वयं कह दिया कि नहीं नहीं इससे हमको कोई भय नहीं है, देवकी से भय नहीं है, देवकी के पुत्रों से भय है। लेकिन कंस बोलने में गलत बोल दिया, क्या बोल गलत बोला, उसने कह दिया कि इसके पुत्रों से भय है, लेकिन वास्तव में देवकी के पुत्रों से भय नहीं था उसको, देवकी के पुत्र से भय था, एक पुत्र से भय था, पर बोलने में वह बोल दिया इस तरह से, भगवान की कृपा थी, देवकी के पुत्रों से भय था। तो वसुदेव जी तो संस्कृत बोलने में प्रथम श्रेणी के विद्वान पुरुष थे, उन्होंने कहा पुत्रं समर्पयिष्ये, इसके पुत्रों को समर्पित करूंगा आपको, इसके पुत्रों को दूंगा, जतः जेभ्यः ते अभयम उत्थितम, जिन पुत्रों से आपको कोई भय नहीं है उनको सौंपूंगा, और जिससे भय है उसको तो किसी कीमत पर आपके हाथ में नहीं दूंगा, आठवें को तो दे नहीं सकता। ये वसुदेव जी का आंतरिक अर्थ था, व्यक्ति को किसी विषम परिस्थिति में पूर्ण नीति से कार्य लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि उस राक्षस के सामने बस सीधा साधा बोल दे हाँ हाँ सब पुत्र को दे दूंगा दे दूंगा, अगर वे कहे होते कि सभी पुत्रों को दे दूंगा तो फिर आठवें को लेकर गोकुल क्यों चल दिए? वो पहले ही उन्होंने ऐसा कहा था, भले वो बोका न समझे, तो इसमें वसुदेव जी का क्या दोष है? वसुदेव जी ने ये कहा था कि जिन पुत्रों से आपको भय नहीं है उनको पहुंचाऊंगा, उनको सौंपूंगा। वो इस तरह से रचना है संस्कृत की, पुत्रान पुत्रों को समर्पयिष्ये, समर्पित करूंगा, जतः जेभ्य ते तव अभयम उत्थितम, ते भयम उत्थितम। लेकिन इस तरह से प्रोनाउंस, इस तरह से उच्चारण किया वसुदेव जी ने कि कंस समझा कि भयम उत्थितम कह रहे हैं, लेकिन वसुदेव जी इस तरह से बोले कि उसमें अभय शब्द और छिपा हुआ था। ये हमारे आचार्य गण टीका करते हैं, अभयम उत्थितम। और ऐसे भी देखिए, कृष्ण को, कंस को अन्य पुत्रों से तो भय था नहीं, आठवें से भय था। आठवें से भय था ना, तो पुत्रा ने कह रहे, डायरेक्ट आंख में धूल झोंक रहे हैं वसुदेव जी, अरे पुत्रों को सौंपूंगा, क्या जरूरत है पुत्रों को सौंपने की? कहते कि पुत्रम समर्पयिष्ये जतस्ते भयम उत्थितम, जिस पुत्र से आपको भय है उस आठवें पुत्र को सौंप दूंगा, और बाकी को सौंपने की कोई जरूरत नहीं है, यदि आप कहें तो सबको सौंप दूंगा। लेकिन कहने का इनका आशय यह था कि आप एक पुत्र से भय कर रहे हैं ना, मैं सौंप दूंगा उनको भी जिनको भय नहीं है। अथवा पुत्रान समर्पयिष्ये जतस्ते भयमुत्थितम, एक और संस्कृत ग्रामर की विधि से इसका अर्थ किया जाता है कि जिन पुत्रों का अतिक्रमण करके, मतलब सात को छोड़ करके आपको आठवें से भय है, उन पुत्रों को सौंप दूंगा। अब जिसे भय है उसको सौंपूंगा कि नहीं सौंपूंगा, इस विषय में चुप है। जतस्ते भयमुत, जतः शब्द का अर्थ जस्मात भी होता है, या जेभ्य, जिन पुत्रों से, जिन पुत्रों का अतिक्रमण करके आपको आठवें से भय है, तो जिनका अतिक्रमण करके आपको भय है उन पुत्रों को सौंप दूंगा, आठवें को सौंपेंगे कि नहीं इस विषय में चुप। उसको क्यों सौंपेंगे? भगवान को इस राक्षस के हाथ में क्यों देंगे? और मान लीजिए वसुदेव जी यदि भगवान कृष्ण को कंस को सौंप देते, तो भगवान ऐसे खतरनाक बात का पुत्र क्यों बनेंगे जो ऐसे राक्षस को दे सकता है? तो भगवान और पिता नहीं चुन लेंगे? ऐसे ऐसे नलायक का पुत्र क्यों बनेंगे? तो जिसके हृदय में स्नेह का समुद्र लहरा रहा है भगवान के प्रति, अद्भुत वात्सल्य है, उसका पुत्र बन रहे हैं ना, तो वसुदेव जी कैसे कह सकते थे कि मैं आठवें पुत्र को सौंप दूंगा? ऐसा कभी हो नहीं सकता। बोलने में बहुत प्रवीण थे, इसलिए वे बोले कि जिन पुत्रों से आपको कोई भय नहीं है उनको सौंप दूंगा, और जिससे भय है उसको तो गोकुल पहुंचा करके रहूंगा जो भी मन में सोच रहे हो उसको नहीं सौंपूंगा। तो कंस से फिर भी पूछे, ठीक है मैं तो आपसे कहा हूं, लेकिन आप बताइए कंस जी, मुझ पर आप विश्वास करते हैं? तो कंस कहता है, देखिए आप हमको ज्ञान दिए, कुछ भी कहे वो बात हमें समझ में बिल्कुल नहीं आई, लेकिन मुझे विश्वास है कि चाहे सूरज अपनी गर्मी छोड़ दे, बर्फ जैसा ठंडा हो जाए, चंद्रमा गर्म हो जाए, हिमालय अपने स्थान से हट जाए, समुद्र सूख जाए, लेकिन आप अपने वचन से नहीं डिगेंगे, इतना मुझे विश्वास। इस तरह से कहा, मुझे आप पर विश्वास है। ये है, ये थी वसुदेव जी की व्यवहारिक कुशलता। उनके ज्ञान से वो प्रभावित नहीं हुआ, उनके आचरण से वो प्रभावित था कंस, और कहा ठीक है छोड़ देता, देवकी को छोड़ दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। श्वशुर बधा विवृत्ते कंसस्तद वाक्य सार्वित, तस्य वाक्यस्य सारवे, वसुदेव जी के वाक्य का सार वो जानता था। वाक्य का सार क्या है? सत्यत्व, सत्य ही वाणी का सार है। वो जानता था कि वसुदेव झूठ नहीं बोलते, और वास्तव में वसुदेव जी झूठ नहीं बोले। एक बार हमसे और वसुदेव जी का जब आठवां पुत्र हुआ तो उसे कंस को न देकर के वे नंद बाबा के यहां क्यों ले गए? क्यों ऐसा किया? आखिर झूठ बोले कि नहीं? नहीं, झूठ नहीं बोले। वो जो कहे थे वही किए। और दूसरी बात यह है कि भगवान जो कहेंगे वो करेंगे कि अपने मन का करेंगे? भगवान ने कहा कि यदि कंसा विभेषी तुम तरही में गोकुलम नय, हे पिताजी आप यदि कंस से बहुत डरते हैं मेरे लिए तो मुझे गोकुल में छिपा दीजिए, मुझे पहुंचा दीजिए गोकुल में, मैं वहां सेफ रहूंगा, कुशल रहूंगा। और वसुदेव जी ये नहीं कहे कि जब आपकी कृपा से हथकड़ी बेड़ी खुल गए, सब कुछ हो गया, तो आप क्यों नहीं चले जाते हैं? ऐसा वो नहीं कहे। तो अपने पुत्र को गोद में ले करके और चोर की तरह छिपा करके ले गए गोकुल। मान लीजिए कोई लाख वचन दिया हो किसी को, ये करना है, वो करना है, वो करना है, ऐसे करना है, इसे स्नेह करना है, प्रेम करना है। जैसे अर्जुन, अर्जुन अपने स्वजनों को नहीं मार रहे थे, भगवान ने कहा मैं कहता हूं मारो, तो उन्होंने कहा ठीक है कर, इससे बचने में। तो यही सत्य है, भगवान की आज्ञा का पालन करना यही सत्य है। मन तो स्वयं झूठा है, शरीर झूठा, निर्णय सत्य हो नहीं सकता है। तो वसुदेव जी ने जो किया वो सत्य किया, भगवत आदेश का पालन किया। और पहली बात तो यह है कि उन्होंने यही कहा था, ऐसा ही कहा था, कभी भी उन्होंने प्रतिज्ञा नहीं किया था कि आठवें पुत्र को सौंप दूंगा। पर कंस नहीं समझा तो क्या किया जाए? हरीश्वरी जी कहते हैं कोई ऐसा विषम संकट हो कि आप बिल्कुल सत्य बोलिए, एज इट इज बोलिए तो खतरा होने वाला है, और असत्य बोलेंगे तो असत्य बोलने का पाप लगेगा। इसलिए वाक्य को ऐसा बोलना चाहिए कि उसके दो अर्थ हों। एक अर्थ से वो समझने वाला अपने पर्पस को समझे और दूसरे अर्थ से हमारे सत्य की रक्षा हो जाए। वसुदेव जी इस विषय में बहुत प्रवीण व्यक्ति हैं। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि आप इसी से समझ सकते हैं कि वह व्यक्ति कितना बड़ा विद्वान, कितना होनहार होगा जिसके प्रेम के वश में भगवान पुत्र बनने के लिए तैयार है। भगवान कृष्ण से जब पूछा जाता था आपका नाम क्या है, तो भगवान कहते थे वदंती वासुदेवेति वसुदेव सुतो हि माम, मैं वसुदेव जी का पुत्र हूं इसीलिए लोग मुझे वासुदेव कहते हैं। भगवान यही नाम बताते थे सर्वत्र। आज भी हम लोग देखते हैं कि आप कहीं फॉर्म भरिए, पासपोर्ट बनाइए या कोई काम कीजिए तो सबसे पहले पूछा जाता है तुम्हारे पिता का नाम क्या है। तो भगवान का भी परिचय पूछा जाता है तो ये पूछा जाता है तुम्हारे पिता का क्या नाम है। तो भगवान बताते हैं वसुदेव, बड़े गर्व के साथ। वास्तव में अपने पिता का नाम जब भगवान बताते हैं तो उनको बड़ा गर्व होता है कि हमारे पिता इतना महान है, इतना शुद्ध है। तो जिस व्यक्ति को भगवान के पिता श्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ वह बोलने में कितना कुशल होगा, कितना महान होगा, ये तो हमारा मन सोच भी नहीं सकता, कल्पना नहीं कर सकता। इस तरह वसुदेव जी ने कहा तो ससुर बधात निवृत्ते, कंस अपने बहन के वध से निवृत्त हो गया। सब लोग मथुरा के राजपथ पर तमाशा देख रहे थे। जब देवकी की चोटी छोड़ा होगा, तलवार को म्यान में रखा होगा, तब सब लोग कहे होंगे जय हो महाराज कंस की, जय हो, जय परम दयालु राजा की जय, कितना दयावान है। और वसुदेव जी कहने लगे, वसुदेव जी तुरंत प्रशंसा चालू किए, ओहो विश्व के इतिहास में यह पहली घटना हुई होगी कि कोई व्यक्ति अपने शत्रु की मां को छोड़ दिया हो बिना मारे। धन्य है आप जैसा दयालु, भगवान जथा दयालु इस संसार में कोई नहीं होगा। जथा दयालु में जथा अदयालु वो संधि करके बोल रहे थे, जथा अदयालु, तो वो समझ रहा था कि ये कह रहे हैं कि मेरे जैसा दयालु इस जगत में कोई नहीं है। और वसुदेव जी कहते आपके जैसा अदयालु इस जगत में कोई नहीं, उसको समझाने के लिए ऐसे बोल रहे थे। तो वो समझा कि बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं, और इसलिए वसुदेव जी प्रशंसा किए। वसुदेव पितम पिता प्रशस्य प्राक्षत गृहम, वसुदेव जी प्रशंसा कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे। नहीं तो हो सकता था एक मिनट के बाद फिर बदल जाता, कहा कि नहीं 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 तुम पर विश्वास नहीं है, मैं मारूंगा देवकी को। हो सकता था उसका चित बदल जाए, इतना खल था। इसीलिए वसुदेव जी प्रशंसा कर रहे थे, धन्य है आप, धन्य। एक बार देवकी के वध का निर्णय करके भी, हाथ में खड्ग ले करके भी आप बदल गए, आपका चित बहुत महान है, धन्य है। जिसे कि आगे मारने की इच्छा भी हो तो वसुदेव जी की प्रशंसा के कारण वो न मार पाए, यह नीति थी वसुदेव जी की, धन्य। शत्रु की जननी को कोई छोड़ेगा? बताइए, इसके पुत्र से आपकी मृत्यु लिखी हुई है, वही देवता बोल रहे हैं, इतना सत्यवादी देवता, और फिर भी आप इसको नहीं मारे, वो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, धन्य है आप। और सत्य के संग्राहक हैं आप, सत्य को समझ गए। देवकी को नहीं मारा आपने, आपका जस बढ़ेगा, वास्तव में सारे संसार में जस बढ़ेगा। अपने शत्रु को मारिए, कोई बात नहीं, धन्य है, आपकी जय हो। थैंक्स कह दिया वसुदेव जी ने, और कंस तो बड़ा प्रसन्न होकर के चला गया, और वसुदेव जी भी अपने घर गए। विवाह के बाद विदा हुए थे आज, बिचारी पर इतना संकट आया, लेकिन खुशी खुशी जो कुछ भी हुआ, लेकिन अंत भला तो सब भला। देवकी को लेकर के वसुदेव जी गए। अब श्री सुखदेव गोस्वामी कथांतर कर रहे हैं। अथ कालोपावृत्ते देवकी सर्वदेवता पुत्रान प्रसुस्वे चष्टौ कन्यां चैवानुवत्सरं। अथ मांगल्ये, श्री सुखदेव गोस्वामी खुशी में कह रहा हो, अथ मंगल हुआ, बहुत बड़ा संकट टल गया। तब समय आने पर, काले उपावृत्त, समय बीतने पर देवकी ने 8 वर्ष में 8 संतान को उत्पन्न किया, प्रत्येक वर्ष एक एक पुत्र, क्योंकि वसुदेव जी और देवकी इस प्रतीक्षा में थे कि भगवान हमारा पुत्र बने, वे आवे जल्दी से जल्दी, हम उनका मुख देखना चाहते हैं। इसीलिए प्रत्येक वर्ष एक संतान उत्पन्न किए, और अंत में एक कन्या सुभद्रा। ये सबके जन्म की एक बार कथा कहकर के सुखदेव गोस्वामी बारी बारी से जन्म की कथा कहेंगे। देवकी ने 8 पुत्रों को जन्म दिया, 8वें पुत्र स्वयं भगवान, 7वें श्री बलराम जी जो गर्भ में रहे थे लेकिन जन्म नहीं हुआ, जन्म रोहिणी से हुआ था। तो 7वें पुत्र के विषय में मथुरा में इधर उधर छपा था कि वो 7वां गर्भ गायब हो गया, कंस ने तंत्र द्वारा उड़ा दिया, किसी तांत्रिक द्वारा, लेकिन 6 को तो मारा वो। तो उसकी कथा इस प्रकार से है, जब प्रथम पुत्र हुआ कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसाया नक दुंद भी अर्पया मास कृष्ण सो नृतादति भी वाला। जब पहला पुत्र हुआ वसुदेव जी को घर पर हुआ, अपने घर में, अभी वो कारागृह में नहीं थे, जब पुत्र हुआ तो पुत्र का नाम वैसे तत्काल नहीं रखा जाता है, लेकिन फिर भी पूर्व जन्म की कथा से और जैसे तैसे गणकों ने नाम रख दिया होगा कीर्तिमान। छोटा बच्चा अभी जन्म लिया और उसकी नाल भी नहीं काटी गई थी, और श्री वसुदेव जी अपने गोद में लेकर के कंस को देने के लिए आए, क्योंकि सो सह अनृताद अति भी वाला, वे असत्य बोलने से बहुत घबराते थे, झूठ नहीं बोल सकते, कहा था उन्होंने अर्पित करने के लिए तो लेकर के आए। प्रश्न होता है, अरे कैसे पुत्र को ले गए, पत्नी को बचाने के लिए उतना ज्ञान दिए, उतना प्रयास किए, और बच्चे को बचाने के लिए कुछ नहीं उपाय कर सकते थे? इतने कोमल शरीर वाले बच्चे को उस राक्षस के हाथ में देने के लिए ले जा रहे थे। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अर्पया मास कृच्छ्रेण, बड़े कष्ट से अर्पित कर रहे थे, मन में प्रसन्नता नहीं थी, बहुत कष्ट था, बच्चे का मुख देख रहे थे बार बार, और फिर भी क्या करें, उन्होंने कहा था अर्पित करने के लिए, इसलिए भी है। तो इस पर मानो परीक्षित महाराज पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से, अरे वसुदेव जी कैसे सह लिए पुत्र का मरण, वो तो ले जाएगा, ले जाएंगे तो मारेगा, इसको कैसे सह लिए, कैसे सह लिए, अपने आंखों के सामने पुत्र का मरण कैसे सहेंगे। तो श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, किम दुस्सहम साधुना, जो सत्य प्रतिज्ञ हैं, सत्य संध हैं, वे क्या नहीं सह सकते हैं, सत्य की रक्षा के लिए पुत्र के मरण का दुख भी वे सह सकते हैं। किम दुस्सहम साधुना, विदुषाम किम अपेक्षित, किम दुस्सहम साधुना, विदुषाम किम अपेक्षितम, किम कार्यम कदर्याणाम, दुस्तेजम किम धृतात्मना। एक सिद्धांत का श्लोक बोल रहे हैं और इसके चार प्रश्न बनते हैं इस श्लोक में। तो एक प्रश्न है कि वसुदेव जी कैसे पुत्र का मरण देख सके, कैसे ले गए। तो कहते जो साधु हैं, जो सज्जन हैं, सत्य प्रतिज्ञ हैं, वे क्या नहीं सह सकते हैं? जीवन में चाहे जो कुछ भी दुख हो, कुछ भी कष्ट हो, लेकिन सत्य के लिए, भगवत भजन के लिए वे सह लेते हैं कष्ट को। तो वसुदेव जी ऐसे थे। तो वसुदेव जी को दृष्टांत में रह करके कह रहे हैं, साधु जन क्या नहीं सह सकते, सब कुछ सह लेते हैं। तो एक प्रश्न होता है फिर दूसरा कि अरे वसुदेव जी अपने पुत्र के लालन के सुख की अपेक्षा क्यों नहीं रखे, पुत्र को का लालन करने में, उसको सहलाने में, चुमने में, उत्तोलन करने में एक सुख मिलता है। वास्तव में घर गृहस्थी में यह एक बहुत बड़ा सुख है, पुत्र को गोद में लेना, उसे चुमना, उसको खिलाना पिलाना पोसना, यह सुख है। संसार में जब सुखों का जिक्र आया है तो उसमें पुत्र के लालन का सुख एक बहुत बड़ा सुख है। ऐसा देखा गया है, पुत्र बोलता है तो माता पिता को प्रसन्नता होती है, पुत्र को गोद में लेकर प्रसन्नता होती है, और कभी कभी छोटा बच्चा यदि रूठ जाता है तो माँ उसे गोद में लेती, अंक में लेती है, खिलाती है पिलाती है। जैसे भगवान कृष्ण एक दिन माँ जसोदा के गोद में थे, तो ऐसे दृष्टि पड़ गई, सोए थे छत पर, ऊपर टेरेस पर सोए थे भगवान, माँ गोद में ली थी। तो कृष्ण कहने लगे, ये क्या है माँ, ये चमकता हुआ, ये क्या है, ये क्या है। माँ ने कहा कि चंद्रमा है। तो कृष्ण कहने लगे, चंद खिलौना लइयो मैया, चंद खिलौना लइयो, चंद्रमा को दो, मैं खेलूंगा, खिलौना जैसा लाओ लाओ। अब तो माँ तो बड़े फेर में पड़ी कि चंद्रमा को कैसे लाओ। तो माँ को एक जुक्ति सूझी, जसोदा माँ को, वो कहने लगी, देखो कृष्ण, देखो बेटा, ये जो चंद्रमा है ये छूने लायक नहीं है, आग्रह मत करो इसे किसके साथ खेलने का, इसमें काला काला धब्बा दिख रहा है, देख रहे हो क्या है, देख रहे हो काला धब्बा कलंक। तो कृष्ण कहते, हाँ जानते हो क्या है। कृष्ण कहते नहीं। तो माँ ने कहा, अरे वो विष है, वो जहर है, विष है। विष है, विष कैसे लग गया मैया, माँ विष कैसे लग गया। अब कृष्ण पूछ रहे हैं, गोद में है सर्वज्ञ परब्रह्म भगवान, इस तरह से पूछ रहे, विष कैसे लग गया। तो माँ जसोदा कहने लगी कि विष इसका भाई है, एक ही समुद्र से दोनों उत्पन्न हुए हैं। कैसे कैसे उत्पन्न, समुद्र से उत्पन्न हुए, ये समुद्र का लड़का है और विष भी उत्पन्न हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ। तो माँ कहने लगी कि एक बार देवताओं ने और दैत्यों ने मिल करके समुद्र मंथन किया था, क्षीर समुद्र, एक दूध का समुद्र है, उसको मथा था देवताओं ने और दानवों ने, तो उससे चंद्रमा निकला था, विष निकला था। तो कृष्ण पूछते हैं, दूध का समुद्र है माँ, हम तो मटका में दूध देखते हैं, या गागर में दूध देखते हैं लेकिन सागर भरा हुआ है दूध से, तो माँ कितनी गायों ने मिल करके दूध दिया था। अब तो माँ घबराने लगी, क्या उत्तर दे। वो कहती है कि अरे लाला, कोई जरूरी नहीं है कि गाय के गाय से ही दूध निकलेगा। गायों ने दूध नहीं दिया था क्षीर समुद्र में। तो कृष्ण कहते नहीं नहीं, बिना गाय के दूध कैसे होगा, बिना गाय के दूध कैसे होगा। तो माँ यशोदा ने कहा कि अरे मूर्ख, जो गाय में दूध बना सकता है वो बिना गाय के दूध नहीं बना सकता है क्या? गाय में दूध कौन बनाया है? भगवान बनाया है ना। तो कृष्ण कहते हैं हाँ, तो जब गाय में दूध बनाया है तो बिना गाय के दूध नहीं बना सकता है। तो कृष्ण कहते हैं हाँ, ऐसा संभव है। पूर्ण आस्तिक है, ईश्वर की सत्ता को मान रहा, इनके अलावा कोई दूसरा ईश्वर है नहीं, लेकिन भगवान इस तरह से बाल लीला कर, हाँ ऐसा संभव है, ईश्वर सब कुछ कर सकता है। लेकिन उस दिन तो कृष्ण शांत हो गए, और फिर दूसरे दिन कहने लगे, मैया चंद खिलौना लई हो, कुछ भी हो, जहर हो चाहे कुछ भी हो, चंद्रमा को दो खेलने के लिए। और माँ, मैं नहीं मानता हूं कि वो विष है, क्योंकि चंद्रमा की किरणों में शीतलता है, अगर विष होता तो हमारा देह जलने लगता है, विष नहीं है। हम लेंगे वो माँ के गोद से उतर गए, धूली में लौटने लगे और कहने लगे, यदि नहीं चंद्रमा को दोगी तो मैं तुम्हारे गोद में, तुम्हारे अंक में कभी नहीं आऊंगा, और धूल में लौटने लगे। माँ बुला रहे, देखो आओ आओ, वो दूर रहता है, कैसे बुलाऊ, नहीं नहीं लूंगा, चंद्रमा को लूंगा, चंदा मामा को लूंगा। इस तरह से कहने लगा, और कहने लगा कि अगर नहीं चंद्रमा को दोगी, तुम्हारे अंक में नहीं आऊंगा, और अब मैं केस नहीं संवारने दूंगा, शंकर जी जैसा ऐसे ही जटा बनाए रखूंगा, जो तुम मुझे कंघी करती हो और गेड़ी गुथती हो तो नहीं करने दूंगा, तेल नहीं लगाऊंगा, राख लगाऊंगा शिव जी की तरह, ऐसे ही बोल रहे हैं। मैं नहाऊंगा नहीं, और कोई भी पूछेगा कि कृष्ण तुम किसके पुत्र हो तो कहूंगा नंद महाराज के, और कोई पूछेगा कि यशोदा के, नहीं उसका पुत्र नहीं, ऐसा कहूंगा। नंद बाबा का पुत्र कहाऊंगा, तुम्हारा बेटा नहीं कहाऊंगा, अगर तुम ला दोगी चंद्रमा को तब मैं तुम्हारा पुत्र कहलाऊंगा। और लौटने लगे धूल में, माँ बहुत चिंता में पड़ी, उसने कहा सुनो, मैं चंद्रमा को ला देती हूँ। इतना कह करके माँ एक परात में, बर्तन में पानी भर करके लाई और कही कि देखो चुपचाप रहना, हल्ला मत करना, मैं चंद्रमा को बुला रही हूँ। तो पानी भर करके बर्तन में और रखी आंगन में, तो चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ने लगा, और जल अस्थिर था इसलिए चंद्रमा दिखाई पड़ने लगा। कृष्ण को बुलाए, देखो आ गया है, यहाँ आ गया है। तो कृष्ण आकर के देखे तो कहते आ गया है। तो माँ ने कहा छूना मत, लेकिन कृष्ण माने नहीं, और तो तत्काल पकड़ने चले छप से, तब तक पानी हिल गया और चंद्रमा दिखाई नहीं दिया। तो कहते ये भाग रहा है, कहाँ चला गया, फिर रोना चालू कर दिया, कहाँ गया, मैं चंद खिलौना लूंगा। तो माने कहा चुप रह जाओ, फिर आ जाएगा। तो फिर जल अस्थिर हो गया, फिर चंद्र का प्रतिबिंब दिखने लगा। तो कहते हाँ, तो मैं कहती हूँ ना कि बोलो मत, तुम चुप रहो और छुओ मत। तो कृष्ण कहते हैं ठीक है, अब नहीं छूंगा। इस तरह से कह करके माँ शांत होना देती। तो भगवान अपनी बाल लीला द्वारा नंद महाराज को, यशोदा को बहुत सुख दिए। इस जगत में भी वास्तव में जो बच्चों की लीला है, बच्चों का खेल है, वो माता पिता के हर्ष का बहुत बड़ा कारण होता है। एक कवि ने तो यहां तक कहा गया है कि यदि बच्चों के लाड़ प्यार का अवसर न मिले तो इस गृहस्थी को कौन स्वीकार करेगा, इसमें तो केवल मरना है। वास्तव में सुख तो केवल ये दो है, शास्त्र बताता है सुख गृहस्थी में दो है, एक तो अपने बच्चे को प्यार करने का, लालन करने का सुख, और दूसरा है अपनी पत्नी से एकांत में वार्ता करके उसको मनाने का सुख। अगर वो रूठ जाए तो उसको भी थोड़ा मनाना, यह भी एक सुख है। इसको स्वयं भगवान कृष्ण कह रहे हैं। रुक्मिणी जी से जब उन्होंने परिहास किया तो रुक्मिणी गिर गई, मान नहीं किया। लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं सोचता था कि जब मैं ऐसी बात कहूंगा तो तुम तिरछे नेत्र करके मुझको डांटोगे कि ऐसा क्यों कह रहे हो, ये क्यों कह रहे हो। लेकिन तुम तो इतनी भोली भाली निकली कि गिर गई धड़ाम से। यही एक सुख है गृहस्थी में, भगवान कहते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि ऐसे पुत्र लालन के सुख की अपेक्षा वसुदेव जी ने क्यों नहीं किया, क्यों ले गए कंस के पास। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, विदुषाम किम अपेक्षितम। जो विद्वान हैं, जो जानते हैं कि भगवान हरि ही परम तत्व हैं, परम रस हैं, सुख हैं, वे और किस सुख की अपेक्षा करेंगे। भगवत भक्ति के, भगवत भगवान से मिलने वाले सुख की अपेक्षा करते हैं, और किसी सुख की अपेक्षा नहीं। वसुदेव जी के मन में ये आइडेंटिटी बच्चे को खिला करके लालन करके सुख पाने की अपेक्षा नहीं। वो जानते थे कि उनकी रक्षा करूंगा, उसी से जो सुख मिलेगा मिलेगा, और सुख की अपेक्षा नहीं थी। और तीसरा प्रश्न उठता है कि अच्छा वसुदेव जी की तो कंस का चित बदल जाएगा, वो छोड़ देगा। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, नहीं, किमा कार्यम कदर जानम। जो कदर्ज है, जो कृपण है, दुष्ट है, उसके लिए क्या अकार्य है। कंस कभी नहीं छोड़ेगा बच्चे को, वो तो मार ही देगा। जो नीच होते हैं, क्रूर होते हैं, उनके लिए क्या काम ऐसा है जिसको नहीं कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कंस तो मारने वाला था। चौथा प्रश्न उठता है कि ठीक है, वसुदेव जी पुत्र सुख की अपेक्षा नहीं किए, देवकी ने कैसे अपने पुत्र को त्याग दिया, प्रथम पुत्र को कैसे त्याग दिया। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, दुस्तजम किम धृतात्मनाम। धृतात्मनाम जय ही चित्ते हरि ही धृतात हरि कृष्ण। जिन लोगों ने अपने हृदय में कृष्ण को पकड़ लिया, धारण कर लिया है, वे और क्या नहीं छोड़ सकते, सब कुछ छोड़ सकते। तो मां देवकी जानती थी कि उसके आठवें पुत्र भगवान बनने वाले हैं, वो कृष्ण को हृदय में पकड़ी थी, इसलिए इस सुख से कोई, इस पुत्र से कोई सुख की अपेक्षा नहीं रखे, त्याग दी। ठीक है, जिन्होंने भगवान को हृदय में पकड़ लिया है वो सकते हैं, उनके लिए दुस्तेज कुछ भी नहीं। देखिए कितना सुंदर श्लोक बोल रहे हैं, दुस्सह किम नु साधु नाम विदुषाम किम अपेक्षितम किम अकार्यम कदर्याणाम दुस्तेजम किम धृतात्मनाम। तो वसुदेव जी अपने पुत्र को लेकर कंस के पास गए, कंस को उन्होंने अर्पण किया। उन्होंने कहा वाणी से, ऐसे अपने को नहीं रख रहे थे कि कंस महसूस करे कि इसको पुत्र लाने में कष्ट हो रहा है, जैसे ऐसा लगा कि खुशी खुशी से, बिल्कुल आनंद से लाए बच्चे को, लाए और कहे कि यह है प्रथम पुत्र, जैसा मैंने कहा था आपको मैं अर्पित करता हूं। तो कंस देख करके तत्काल बदल गया। दृष्ट्वा समत्वम तत्क्षौरे सत्य चैव व्यवस्थिति कंसस्तुष्ट मना राजन प्रहसन इदम अब्रवीत। कंस देखा वसुदेव किस कितने सम है, अपने पुत्र के मृत्यु और जीवन में सम है, अथवा पुत्र या शत्रु दोनों के प्रति इनका सम भाव है। कंस जानता था कि वह वसुदेव जी का शत्रु है, लेकिन शत्रु के प्रति भी ऐसा व्यवहार, जो कहा वो कर दिया। वसुदेव जी चाहते तो घर पर पुत्र हुआ उसी समय पुत्र को लेकर के कहीं भाग सकते थे। कोई कंस पहरेदार नहीं बैठाया था, अभी फ्री थे वे, पूर्ण विश्वास करता था। तो वसुदेव जी चाहते तो अपने पुत्र को लेकर के अलक्षित भाग सकते थे, कहीं किसी को दे सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। लेकिन कंस ने देखा, दृष्टवा समत्वम तत्क्षौरे, सौरी की सूर नंदन वसुदेव जी की समता को देखा। पुत्र के जीवन और मरण में समभाव है, शत्रु के प्रति और पुत्र के प्रति समभाव है, और सत्य चैव व्यवस्थिति, और सत्य में विशेष अवस्थिति जो कहा वो कर रहा है, सत्य निष्ठा को देख करके और समता को देख करके कंसह तुष्ट मना राजन। हे महाराज परीक्षित, सुखदेव जी संबोधन करते हैं, कंस संतुष्ट हो गया, खुश हो गया और हंसने लगा। हंस करके कहा वाह धन्यवाद, उसने सराहना किया वसुदेव जी की और हंसते हुए इदम अवृत यह कहा, राजन संबोधन कर रहे हैं श्रील सुखदेव गोस्वामी की, देखिए कंस कितना जल्दी जल्दी बदलता था। उस बार तो देवकी की गर्दन काटना चाहता था, वसुदेव जी से बदल गया। अब इस बार स्वयं बिना शिक्षा के बिना उपदेश के बदल गया। अब तक प्रतीक्षा करता था कि पहला बच्चा आएगा तो मार दूंगा मार दूंगा मार दूंगा, जब पहला बच्चा आया तो बदल गया। इस समय वसुदेव जी ने कोई तत्वोपदेश नहीं किया, कोई दूसरा मंत्री भी नहीं सिखाया कि सरकार बच्चे को छोड़ दिया जाए, अपने आप बदल गया। कंस जैसा जल्दी जल्दी बदलने वाला इतिहास में कोई व्यक्ति नहीं मिलता है, तुरंत बदल जाता है, ठीक विपरीत। बहुत संतुष्ट हुआ और हंसने लगा, कहने लगा प्रतियातु कुमारो यम अयम कुमार प्रतियातु, अरे ये बच्चा अपने घर में जाए, ले जाए ले वाली पोस यहां लाने की कोई जरूरत। अरे वाह देखिए कंस की साधुता, अयम कुमार कह करके हाथ से दिखा रहा, अरे ये बच्चा को ले जाइए ले घर ले जाइए घर ले जाइए, तो सूतिका गृह में अभी पालने लायक है, कोमल शरीर वाला, इस पर हवा नहीं लगनी चाहिए, ले जाइए ले जाइए। प्रति या तो कुमारो में यह बच्चा जाएगा ले जाए, न यशवा दस्ती में भय। वसुदेव जी ने कहा क्यों, आपने तो चाहा था इस बच्चे को मैं आपके लिए लाया हूं। तो कहा था न यस्मा दस्ती में भयम, अस्मात में भयम न अस्ति, इससे मुझे भय नहीं है, ये मेरा बद नहीं करेगा। अरे तो पहला बच्चा है ना, आपके आठवें बच्चे से मुझे भय है। अब बोलने लगा, देखिए इसका परिवर्तन इसके हृदय में, आज बदल गया, आठवां को मारना चाहता है, अब सात को तो नहीं मारेगा। इसके हिसाब से इसके चित्तवृत्ति के अनुसार अब तो क्षमा कर दिया, पहला को ही क्षमा नहीं किया, सातवें तक क्षमा कर दिया। यह कह करके कि अस्मात में भयम न, इससे मुझे भय नहीं है। एक दिन देवकी को ही मार रहा था, एक भी पुत्र न होने पावे, और अब सात की तो गारंटी दिया है, ले जाइए ले जाइए। सबसे पहले उसके मुख से प्रति यातु शब्द निकला, ले जाइए ले जाइए हटाइए हटाइए बच्चे को हटाइए, और तुरंत ही बुलाएगा, लाओ 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 वसुदेव को भेजो, अपने पुलिस को कहेगा जल्दी बुला लो पुत्र के साथ, अभी मारना है अभी मारना है, अभी नारद जी के आने के बाद और उनके जाने के बाद ही बुलाएगा। और अब देखिए इस तरह से चित्त में परिवर्तन हुआ, ले जाइए इससे भय नहीं। इतना ही नहीं कहा कि इससे मुझे भय नहीं, भय किससे है, अष्टमात जुयोर गर्भा मृत्यु में विहित किला, आप दोनों के आठवें गर्भ से मेरी मृत्यु निश्चित किया है देवताओं ने। विहित विहित का अर्थ निश्चित, किला का अर्थ निर्विवाद, आकाशवाणी ने जैसा कहा है आप दोनों के आठवें पुत्र से मेरी मृत्यु है। तो इस वाक्य से इतना तो हो गया ना कि जब आठवां होगा तब लाइएगा, यह कुमार जा यह बच्चा जा, इसके द्वारा उसने स्पष्ट कह दिया कि सात पुत्र तक आप मत लाइएगा, जाइए आठवां होगा उसको लाइएगा। लेकिन आठवां होने से पहले ही इन लोगों को जेल में बंद किया था पहले। अब दूसरा पुत्र होगा वो जेल में होगा, ये जो पहला घर पर हुआ था सो हुआ था। आप सुनेंगे कथा में कंस की इस लीला को, कंस के इस कर्म को। कंस इतना खल था और चंचल चित्त वाला, जब अपने मुख से कह दिया कि ले जाइए इस पुत्र से भय नहीं है, आठवें से भय है, तो इसका अर्थ आठवें को लाइएगा सात को मत लाइए, लेकिन तत्काल ही इसका निर्णय कितना बदलेगा। आठवें पुत्र से हमको भय, ले जाए ले जाए। और यह किस लिए बदला? सुखदेव गोस्वामी के वाक्य पर जरा ध्यान दीजिए, दृष्टवा समत्वम तत्क्षौरे सत्य चैव व्यवस्थिति, समत्वम दृष्टवा और सत्य व्यवस्थितिम दृष्टवा। यह नहीं कि बच्चे पर कृपाम कृतवा, उस बच्चे के प्रति स्नेह हुआ, ऐसा नहीं। यह उसके मन में नहीं आया कि ये मेरा भांजा है, मेरी बहन का पुत्र है, कम उम्र का है, इसको नहीं मारना चाहिए। वसुदेव जी की महानता को देख करके थोड़ा चित बदला, स्नेह नहीं उत्पन्न हुआ बच्चों के प्रति, तो ले गए वसुदेव जी, चले गए। तो कुमार को लेकर के, बच्चे को लेकर के वसुदेव जी गए, लेकिन ना भिनंद तद वाक्यम असतो अभिजितात्मन। वसुदेव जी बच्चे को ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही कोई विश्वास नहीं कर रहे थे कंस पर, न अभ्यनंदत। अभ्यनंदत का अर्थ है कि उसके बाद से खुश नहीं थे, ऐसा नहीं मान लिए कि वो अब ठीक हो गया, बच्चों पर खतरा नहीं। वो जान गए कि ये तो किसी भी क्षण बदल सकता है, तो रास्ते में ले जा रहे थे तो अपने पुत्र को मरा हुआ ही समझ रहे थे, कोई विश्वास नहीं। क्यों? क्योंकि असत खल था, क्रूर था, और दूसरा अविजितात्मन, चित्त पर उस विजय नहीं किया था, असंयम था, चित्त उसका बस में नहीं था, कभी भी बदल सकता था। इसीलिए वे ले गए तो कोई विश्वास नहीं किया, ऐसा नहीं मान लिया कि खतरा खत्म हो गया, अब कोई भी विपत्ति नहीं रही। वो खूब अच्छा से कंस को जानते थे, अरे जिनके आंखों के सामने देवकी मारी जा रही थी, सब कुछ वो देखे हैं, और उसका पहले का भी इतिहास होंगे, कैसे विश्वास कर ले कि कौन सब साधु हो गया, बिल्कुल सज्जन हो गया, नहीं मारेगा, कैसे विश्वास कर। इसलिए श्रील सुखदेव गोस्वामी वसुदेव जी के लिए कहते हैं कि वो विश्वास नहीं किए, ले गए पुत्र को लेकिन विश्वास नहीं किए। हाँ, तो जब उधर वसुदेव जी अपने पुत्र को लेकर के गए, उसके तुरंत बाद उधर वसुदेव जी गए, और तब तक वीणा बजाते हुए श्री नारद जी एकांत में, कंस से वे एकांत में मिले और कहे कि मैं बहुत अर्जेंट एक संवाद लेकर के आया हूं, खबर लेकर आया हूं। यह अभी वर्णन नहीं है कि कंस उनको प्रणाम किया, क्या किया, ये कुछ वर्णन नहीं। लेकिन नारद जी ऐसे हैं कि उन पर असुर भी विश्वास करते हैं, कंस भी विश्वास करता था। तो वे आए और आ करके उन्होंने ये कहना प्रारंभ किया एकांत में, नंदाद्याये ब्रजे गोपायाश्चामीशां च योषितः वृष्णयो वसुदेवाद्या देवक्याद्या जदुस्त्रियः सर्वे वै देवता प्राया उभयोरपि भारत। बंधु सुहृद इत्यादि, ये च कंस मनुव्रत। नारद जी ने कहना चालू किया, देखो कंस, ये जो ब्रज में तुम्हारे द्वारा शासित क्षेत्र के अंदर, तुम्हारे राज्य में ब्रज में जी नंद आदि गोप हैं, जानते हैं कौन है? ब्रज में जो नंद आदि गोप हैं, नंद उपनंद आदि, ये सब देवता हैं, और इनकी जो स्त्रियां हैं जसोदा आदि देवियां हैं, और चकार से उनके जो नौकर पुत्र पौत आदि जो कुछ भी है सब देवता है, और ये जो विष्णु वंशी वसुदेव आदि हैं ये भी सब देवता है, और इनकी जो देवकी आदि स्त्रियां हैं सब देवता है, ये सब देवता। प्राय शब्द लगा ये उन्होंने बताया सब देवता है, तो इतना सुनते ही कंस इनको मारने की तैयारी करेगा, सब देवता है, देवताओं से उसका बैर था, वो दैत्य था। पूर्व जन्म में उसका नाम था कालनेमी। वह कालनेमी हिरण्याक्ष का पुत्र था। तो वसुदेव, नारद जी बता रहे हैं कि ये सब देवता है। उभयरपि भारत, वसुदेव के संबंधी और नंद के संबंधी जो भी हैं, सब देवता है। और यह भी उन्होंने बताया कि भूमेर भराय माणा नाम दैत्या नाम से बधोद्यमन। यह भी उन्होंने बताया कि मैं अभी अभी सुमेरु पर्वत से आ रहा हूं, वहां पर देवता लोग तुम्हारे वध का उद्योग कर रहे हैं, सभी देवता तुम्हारे वध की तैयारी कर रहे हैं। और देवक्या गर्भ संभूतम विष्णु चस्व बधम प्रति। नारद जी ने भी बताया कि विष्णु तैयारी कर रहे हैं तुम्हारा वध करने के लिए, देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाले हैं तुम्हारा वध करने के लिए। मैं अपने पिताजी की सभा से आ रहा हूं, ब्रह्मा जी की सभा से, और तुम्हारा वध करने की योजना चल रही है, और सब देवता जन्म लिए हैं, ये वसुदेव आदि नंद आदि सब देवता है, किसी दिन तुमको मार डालेंगे मिल करके, किसी दिन मार डालेंगे। और वसुदेव के यहां देवकी के गर्भ से विष्णु आ रहे हैं, और तुम ऐसे विचार कुछ करते नहीं हो। तो उसने पूछा कि विष्णु आएगा मेरा वध करने के लिए, पहले जन्म में भी मुझे मारा था वही। हाँ, वो तो जन्म जन्म का तुम्हारा वैरी है, और उस समय भी मारा था, अभी मारने की तैयारी कर रहा है, लेकिन तुम कितना भोला भाला हो, सोचते नहीं हो। जो देवता है तुम्हारे वैरी है, उनको तुम अपना संबंधी मान रहे हो, प्रेम कर रहे हो। तो कंस कहा कि देवकी के गर्भ में आएगा तो आठवें गर्भ में आएगा ना विष्णु। नारद जी ने कहा मूर्ख कहीं के, विष्णु इतना चतुर है कि वो पहले गर्भ में भी आ सकता है, उसको कौन रोक सकता है, कोई बंधन है कि आठवें गर्भ में ही आएगा, पहला बन करके आ सकता है। तुम्हारी बहुत बड़ी मूर्खता है कि पहले बच्चे को तुमने छोड़ दिया और कहा कि प्रतिज्ञा तू कुमार हो, कुमार को लौटा दिया, बहुत गलती की है। इस पर एक प्रश्न होता है कि नारद जी इतना क्रूर कर्म करने के लिए क्यों सिखा रहे हैं। नारद जी चाहते थे कि भगवान के अवतार में विलंब नहीं होना चाहिए, और कंस यदि शांति का मार्ग अपनाएगा, उदासीन हो जाएगा, तो भगवान अब आने में देर करने लगेंगे। वो जान जाए कंस भी साधु हो गया, अब अत्याचार नहीं कर रहा है, तो इतना जल्दी जाने की क्या जरूरत है। नारद जी ने सोचा कि जब ये पाप करेगा, अत्याचार करेगा, तो भगवान जल्दी आएंगे और देवताओं का काम होगा, ये जल्दी मारा जाएगा, और भी अघासुर बकासुर आदि राक्षस हैं, सब मारे जाएंगे। तो सबके मारने के लिए जितना जल्दी भगवान आवे, नारद जी ये चाहते थे, और यही भगवान की इच्छा भी थी कि जल्दी चले। ब्रह्मा जी ने कहा था देवताओं को कि आप लोग जल्दी जन्म लीजिए जदुवंश में, भगवान अवतार लेने वाले हैं। लेकिन नारद जी ने देखा कि भगवान थोड़ा ढीला ढाला हो रहे हैं, ये जल्दी नहीं कर रहे हैं, तो आकर के उन्होंने खड़ा कर दिया कंस को, और एक कमल का फूल दिखाया, कमल पुष्प दिखाया, अष्टदल कमल, आठ पत्ते थे किनारे किनारे। उन्होंने कहा एक जगह से कि गिनो इसमें कौन पहला है कौन आठवां है, तो गिनने लगा, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, ठीक, फिर यहां से गिनो, जो आठ हो रहा था वहां से गिनने को कहा, यहां से गिनो, एक दो तीन चार, तो आठवां ही एक हो गया। तो हां, तो सोचो कोई भी एक हो सकता है, कोई भी आठ हो सकता है, कोई भी दो तीन चार, कोई जहां से गिनो वहीं से। तो क्या विष्णु को तुम इतना कम बुद्धि वाला, पहला बन करके भी आ सकता है। इतना सुनते ही कंस तो तुरंत अपने आदमी को भेजा, अभी वसुदेव को हाजिर करो पुत्र के साथ, जल्दी बुलाओ जल्दी बुलाओ। और ये कब कहा, ऋषिर विनिर्गमे कंस जगन मत्वा सुरानिति, जब ऋषि चले गए तब। इस पर श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी अर्थ लिखते हैं कि नारद जी के चले जाने के बाद तब वसुदेव जी को बुलाया पुत्र के साथ, क्योंकि कौन सोचता था कि नारद के सामने यदि मारने लगूंगा तो लज्जा होगी, लज्जा हो सकती है न मार पाऊंगा एक साधु के सामने, अथवा हो सकता है नारद ही रोक दे, तो मानता था कि पहुंचा हुआ साधु है, लेकिन फिर भी मान लीजिए रोक दिया तो मानना पड़ेगा। तो पता लगा लिया कि नारद जी पूरा नगर से बाहर हो गए, विनिर्गमे, पूरा पूरा विशेषण निर्गमे निकल गए, चले गए सत्यलोक। जो सुना होगा आवाज वीणा बजाते हुए आकाश में जा रहे, पूरा चले गए, तब बुलाया वसुदेव जी को, और जान गए कि सारे देवता साधु हैं, सारे जादव जो हैं या गोप सब देवता हैं। तो पहला काम उसने यह किया कि देवकी के पुत्रों को मारना चालू किया, जो जिस साल जिस दिन होते थे वह जातम जातम अहन पुत्रम तयो रजन संकया, अजन संकया, किसी भी पुत्र में अजन की शंका करता, अजन मैंने अजन्मा विष्णु, यही विष्णु हो सकता है ये सोच करके मार देता था, अथवा विष्णु से भयभीत होकर के मार देता था, या विष्णु समझ कर मार देता था। जातम जातम, जान गया कि देवकी के गर्भ से हमारा वध करने वाले के लिए विष्णु आएगा, तो विष्णु की आशंका से सभी पुत्रों को मारता जाता है। इस पहले उसने सबसे पहले यह किया कि देवकीम वसुदेवम च निगृह निगदैर, देवकी और वसुदेव को कारागृह में बंद कर दिया। केवल कारागृह में बंद ही नहीं किया, निगदै लोहे के जंजीर पैर में बांध करके बंद किया, कहीं भाग न सके, इस तरह से बंद किया। प्रथम पुत्र घर पर हुआ था और अब जो भी पुत्र हुए सब कारागृह में हो रहे थे। एक तो बेचारे दोनों को कारागृह में बंद किया था, सता रहा था, और उस पर भी उत्पन्न हुए पुत्र को मार दिया करता, इस तरह से क्रूरता कर रहा था, मारता गया मारता गया। इस पर महाराज परीक्षित कहते हैं, ओहो ऐसा क्रूर कर्म कर रहा था, बच्चों को मारता जाता था, अरे उसको लज्जा नहीं आई, उसको दया नहीं आई। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी कुछ व्यंग करते हैं महाराज परीक्षित पर, अरे महाराज राजा लोग ऐसे ही होते हैं, आपके परिवार में क्या कम हुआ, ऐसे लोग नहीं मारे गए? कौरव और पांडवों में युद्ध हुआ तो राजा लोग अपना परिवार देखते हैं, मातरम पितरम भ्रातृं सर्वांश्च सुहृदस्तथा घ्नन्ति यशु त्रिपोलुद्धा राजानः प्रायशो भूयः। प्राय इतिहास बता रहा है महाराज कि राजा लोग जो राज्य के लोलुप होते हैं, अपने इंद्रिय तर्पण में रहते हैं, केवल जीना चाहते हैं, शरीर पोषते हैं, उन लोगों को देखा गया है कि वे माँ का वध कर देते हैं, पिता का वध कर देते हैं, भाई का, संबंधियों का, मित्रों का वध कर देते हैं प्राय। अरे कोई कोई राजा ऐसा होगा आप जैसा जो वध न किया हो, नहीं तो आप अपने दादा लोगों को ही तो देखिए ना, वे क्या किए थे, युधिष्ठिर क्या किए थे। अब तो अद्भुत कथा कह रहे हैं कि राजा ना प्रायश भूमि, प्रायश भले ही भगवान की आज्ञा से उन्होंने वध किया था, लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध में सब भाई मरे थे, पिता मरे थे, चाचा मरे थे, मामा मरे थे। वैसे मैं मानता हूं कि आपके पितामह ने राज्य के लोभ से वध नहीं किया था, लेकिन और जितने भी राजा महाराजा हैं वो प्राय राज्य के लोभ से गिनते नहीं हैं। कैमूत न्याय से कहते हैं वो मां को भी मार सकते हैं, किमुत पितरम, अथवा पितरम अपि घ्नन्ति किमुत मातरम, माता पिता तक को मार दिए। जैसा हम लोग सुनते हैं औरंगजेब अपने बाप को जेल में बंद किया था, और हमने देखा है, किताब है, पढ़ा तो नहीं है, शाहजहां उस किताब का नाम है, एक लेखक ने लिखा है, शाहजहां किताब का नाम है, लेकिन उसमें सारी बातें औरंगजेब की लिखी गई है। तो उसमें एक प्रसंग है कि औरंगजेब को, औरंगजेब अपने पिता शाहजहां को जेल में बंद किया आगरा के कारागृह में, तो उसने आज्ञा दिया जेलरों को, सिपाहियों को, कि इसको पानी पीने को मत देना, जितना पानी मांगता है उतना कभी कभी देना, पानी मत देना। ठीक है, एक दिन जेल में गया था निरीक्षण करने के लिए औरंगजेब, तो देखा बाप बिल्कुल दुबला हो गया था, फटा पुराना कपड़ा पहना था, वही व्यक्ति जो एक बार बादशाह था अब कारागृह में वैसा हो गया। तो औरंगजेब पूछा, कैसे हैं? अपने बाप से पूछता, कैसे हैं, भोजन पानी मिल रहा है? तो शाहजहां गाली देते हुए कहा औरंगजेब को, अरे नालायक, तुम इस तरह से मुझे सता रहे हो, भगवान ने मुझे दंड दिया है कि मैं इस कौम में जन्म लिया हूं, अच्छा हुआ होता मैं हिंदू में जन्म लिया होता, हिंदू लोग तो अपने मरे हुए बाप को भी जल देते हैं, तुम तो जिंदा ही पानी नहीं दे रहे हो, ये तो परलोक चले जाने के बाद भी हिंदू लोग अपने पिता को जल देते हैं, पिंडोदक क्रिया करते हैं, तुम तो जिंदा ही पानी के बिना मार रहे हो। फिर औरंगजेब थोड़ा सा पिघला, मुझे ठीक है कुछ मांगो, क्या तुम्हारी मांग है? तो शाहजहां कहता है, देखो मैं बादशाह रहा हूं, राजा रहा हूं, तो मुझे जेल में कुछ ऐसा काम दो जिससे मैं अभी भी अपने मन के मुराद को पूरी कर सकूं कि मैं राजा हूं, बादशाह हूं। तो औरंगजेब पूछता है, क्या बादशाहियत करना चाहते हो? तो उसने कहा कि हमको पढ़ाने का काम दे दो, और किसी को एक छड़ी मारा करूंगा तो मेरे मन में अभी आश्वासन रहेगा कि अभी भी मैं बादशाह हूं, अभी भी कंट्रोल कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है पढ़ाओ। तो पढ़ाने में किसी कैदी को कभी एक दो छड़ी मार देता था तो शाहजहां सोचता था कि अभी भी मैं बादशाह। और एक और मांग किया कि देखो ये जो मैं ताजमहल बनवा रहा हूं, बनाया हूं, उसको मैं देखना चाहता, तो कारागृह में दीवार में एक छेद करवा दो, खिड़की छोटा सा खुलवा दो जिससे मैं उसको देखता रहूं। तो औरंगजेब ने ठीक है कह करके वो छेद कराया, वो छेद आज भी है आगरा के लाल किला में। लोग बताते हैं कि शाहजहां उसी छेद से ताजमहल देखा करता था, उसको बड़ी आसक्ति थी ताजमहल देखने में। तो इस प्रकार से राजा लोग होते हैं, अपने भाई को मार करके गद्दी ले लो, अपने बाप को मार करके गद्दी ले लो। ये तो खैर वैदिक काल के सनातन धर्मी राजाओं में बहुत कम देखने को आता है, मिलेच्छों और जौनों में तो 100% बस भाई को काट करके हो रहा है, बाप को मार करके हो रहा है, उसको काट करके हो रहा है, यही परंपरा चली है। इस राष्ट्रपति को जेल में बंद करके देश से निकाल करके ये बन जाओ, वो आएगा दूसरा तो उसको निकाल करके वो बन जाएगा, वो आएगा उसको निकाल कर वो बन जाएगा, कोई आएगा उसको फांसी चढ़ा कर वो बन जाएगा, यही परंपरा रही। ये इसको कहते असुतृप, केवल इंद्रियारामी, प्राण पोषने वाले निर्दय, ये राजाओं की दशा होती है। ये नहीं गिनते हैं कि ये मेरी माँ है, पिता है, भाई है, ये तो जब साधारण राजा लोगों की ये बात है, कंस तो और पापी था। तो आत्मान यह संजातम प्राग विष्णुनाहतम, वो जानता था कि पहले विष्णु ने मुझको मारा है, ये जानता था। तो यह जान करके वो और विरोध करता था जादुओं से, और देवकी के गर्भ से विष्णु उत्पन्न होकर के मुझे मारेगा, ये जानता था। वो जानता था कि मैं पूर्व जन्म में कालनेमी असुर रहा हूं, चाहे नारद जी ने बताया होगा या चाहे पहले से जानता होगा। तो जादुओं से बहुत बड़ा विरोध किया, जब भी सब विरुद्ध था, और सबसे तो विरोध किया है बस उग्र सेनम च पितरम जदु भोजान धकाधिपम स्वयं निगृह बुभुजे सूर सेनन महाबल। और जो अपने पिता थे उग्रसेन महाराज, उनको कारागृह में बंद कर दिया और स्वयं ही राज हड़प लिया और सूरसेन प्रदेश के मथुरा के राज्य को स्वयं करने लगा। इस प्रकार से अत्याचार हुआ। तो यहां तक कंस के अत्याचार की कथा हुई। अब दूसरे अध्याय से श्री सुखदेव गोस्वामी कथा कहेंगे भगवान किस प्रकार माता देवकी के गर्भ में आए। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जी के कथनानुसार जादवों को देवता मानने लगा कंस, और जद भी सब विरुद्ध था, जादवों से बहुत भारी विरोध किया, उन्हें सताने लगा। किस प्रकार सताता था उसका वर्णन यहां किया जा रहा है। कंस के जो सबसे मुख्य मुख्य सहयोगी थे, साथी थे, इसी में मंत्री थे और अमात्य सेनाध्यक्ष, जो भी उसके जो एसोसिएट्स थे, परिकर थे, उनका नाम श्री सुखदेव गोस्वामी गिन रहे हैं। ये सभी भगवान के द्वारा या भगवान के पार्षदों द्वारा मारे गए हैं, इसलिए इनका नाम लेना भी एक पुण्य का ही कार्य है। इसलिए अध्याय के प्रारंभ में भगवान का नाम न लेकर श्री सुखदेव गोस्वामी कंस के साथियों का नाम ले रहे हैं। प्रलंब, बक, चारुण, पूतना, केसी, तृणावर्त, महासन, मुष्टिक, अरिष्ट, द्विद, पूतना, केसी, धेनुक, बाण और नरक भौ और मागध जरासंध, ये सब उसके साथी थे। एक से एक बलवान थे और इसके सहायक थे। अतः जादवों को सताने में इसके लिए तो बाएं हाथ का खेल था। किस तरह से सताता था? उनका धन छीनता था, घर छीन लेता था, और जान से मार देता था। अभी जान से मार नहीं पाया था, जहां तहां लोग भाग गए। जब भी वो नियम निकाला, रिसोल्यूशन पास किया कि जितने जादव हैं सबको मार दिया जाए, उनका घर छीन लिया जाए और उनका धन छीन लिया। लोग जो ही सुने ते ही जहां तहां भाग गए, घर छोड़ करके। मथुरा जी में कुछ लोग रहते थे और भी माथुर मंडल में, सूरसेन प्रदेश में सब जादव भरे थे। ये लोग अपना अपना निवास स्थान और धन खेत सब कुछ छोड़ करके जहां तहां भाग गए। बड़े सुखी थे, धनी व्यक्ति थे, लेकिन ऐसा उपद्रव किया कंस की ते पीड़िता ने भी सुहकुरु पंचाल के क्या, अपने अपने संबंधियों के यहां छिप करके चले गए, प्रकट नहीं रहते थे। जैसे मान लीजिए महाराज युधिष्ठिर के पास कुछ चले गए, उधर युधिष्ठिर उस समय राजा नहीं थे, और लोग चले गए इधर उधर, कुछ लोग द्रुपद महाराज के राज्य में छिप करके रहने लगे भेष बदल करके। ये लोग सब क्षत्रिय थे, राजा की तरह रहते थे, लेकिन विपत्ति के समय में कहीं गाय चराते थे, भेड़ चराते थे, या हल जोतते थे, छिप करके भेष बदल कर किसी तरह जीवन का गुजारा करने लगे। इस तरह से पापी सताया था उनको, केवल इसलिए कि ये सब विष्णु के भक्त हैं। एक ही अपराध उनका था और कुछ भी नहीं, ये सब विष्णु के भक्त हैं, इसलिए इनको जीने का अधिकार इस पृथ्वी पर नहीं, और जीना है तो हमारा गुलाम बनकर जिए, जैसे रखता हूं वैसे। ये सब लोग भाग गए। इसमें से कंस के सहयोगियों का जो नाम गिना रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, सबसे पहले उन्होंने प्रलंब का नाम लिया। प्रलंब, प्र का अर्थ है प्रकर्षण, लंब का अर्थ है बहुत बड़ा। ये बहुत लंबा दानव था प्रलंब। यह गोप बन करके ब्रज में गया था और इसका वध श्री बलराम जी ने किया। बलराम जी ने किया ना? बलराम जी ने किया।
इसके विषय में यह कहा जाता है कि यह प्रलंब डायरेक्ट दैत्य था, केवल कर्म से ही नहीं जन्म से भी दैत्य था। जन्म से था और कर्म से था, भगवान के सखा के रूप में बन करके और खेल कर रहा था। जिस दिन मारा गया यह, उस दिन बाह्य वाहक लक्षण खेल कर रहे थे भगवान। दो दल में बट गए थे, एक दल के नेता थे श्री बलराम जी, बाद में मारा गया वो हम कथा कह रहे हैं। एक तरफ बलराम जी मुखिया बने प्रधान और दूसरे तरफ श्री कृष्ण। तो प्रलंब भी एक गोप सखा बन करके गया था, ऐसा सखा जिस दिन कोई गोप सखा अपने घर पर रह गया था, वो नहीं गया था, उसका जन्मदिन पड़ रहा था इसलिए उसकी माँ ने रोक लिया था, ये पता लगा लिया कि वो नहीं आया है, तो उसी का रूप धारण करके और इस दल में मिल गया। उस दिन खेल चल रहा था, जो दल हारता था वो घोड़ा बनता था और जो जीतता था वो सवारी करता था। प्रलंब ने सोचा कि मैं हार जाऊं खेल में और हार करके ढोऊं कृष्ण को चाहे बलराम को, ढोऊंगा तो ढो करके ले जाऊंगा, कहीं मार करके खा जाऊंगा, खत्म करूंगा, ये सोच है। तो उसने पहले सोच लिया, कई बार सुना कि ये कृष्ण जो है काला काला ये बड़ा खतरनाक लड़का है, इसको छेड़ना ठीक नहीं है। वो सोच लिया, इसने पुतने को मारा, तृणावर्त को मारा, कई लोगों को मारा, इसने गोवर्धन भी धारण किया था, आग भी पी लिया था, इसलिए इससे भिड़ना ठीक नहीं है, डरता था, इसलिए कृष्ण के पक्ष में हो गया। कृष्ण के पक्ष में होकर के सोचा कि बलराम को ले जाऊंगा ढो करके वहन कर, क्योंकि बलराम जी की उतनी लीलाएं बहुत प्रसिद्ध नहीं थी, यदि कृष्ण जो भी वध करते थे तो उसमें सहायक के रूप में श्री बलराम जी रहते थे, लेकिन प्रधानता कृष्ण की रहती थी, इसलिए कृष्ण से भयभीत था। तो हार गए भगवान, जो जानबूझ करके हार गए, और उसके पार्टी के सब लोग हार गए, भगवान के दल के सब लोग हार गए। तो हारने पर श्री भगवान ने श्री राम को उठाया अपने कंधे पर, भगवान कृष्ण हार गए तो उनको उठे, और प्रलंब इसी ताक में था, प्रतीक्षा में था कि मैं बलराम को उठाऊं, तो वो कहा कि मैं बलराम को ढोऊंगा, हार गया तो क्या करूं। भगवान ने अनुमोदन किया और श्री बलराम जी तो सर्वज्ञ हैं, जानते हैं, लेकिन फिर भी कहा ठीक। चढ़ गए, एक गंतव्य स्थान था कि यहां से यहां तक ढो करके उतारना है, गौएं चर रही थी और ये बच्चे सब खेल रहे थे, भंडीर बन के पास की लीला, तो जहां उतारना था बहुत निकट ही उतारना था, कोई लगता है कि सब सुख मिल गया उनको। तो गए जहां गंतव्य था, सीमा थी, वहां उतारने के लिए तो सब लोग अपने अपने साथी को जिसको ढो रहे थे उसको उतार दिए, लेकिन वह उतारा नहीं, पहले तो ले गया धीरे 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 ले गया, और जब सीमा पर आया तो वायुयान की तरह सर से लेकर के उड़ गया बलराम जी, एकदम जमीन छोड़ दिया, आकाश में चला गया। और श्री बलराम जब नीचे देखे तो उनको तो डर गए, पहले लीला कर रहे थे भगवान, नीचे जब झांकने लगे तो कितना ऊपर आ गया, तब भगवान को अपने बल की स्मृति आई, पहले तो बाल लीला कर रहे थे, समझ गए कि ये राक्षस हमको ले जा रहा है, ले जा रहा है, तो ये तो वे भारी लगने लगे, ऊपर ले गया उस समय बिल्कुल हल्का बच्चा थे, और एकाएक उन्होंने वजन बढ़ाया, उनके उनके शरीर में तो अनंत कोटि ब्रह्मांड है, तो श्री बलराम जी वजन बढ़ाए तो उसकी गति बिल्कुल शिथिल हो गई, अब आगे नहीं जा रहा, लेकिन इसके बाद उन्होंने अपने उसी कोमल हाथ से उसके सिर पर मारा, मारते ही सिर कई टुकड़ा हो गया उसका। देखने में कोमल हाथ बलराम जी का, लेकिन वज्र से भी अधिक घातक, और धड़ाम से गिर पड़ा नीचे। कहां गिरा? जहां बच्चे खेल रहे थे। और देखे बलराम बिल्कुल सुरक्षित है, सब बच्चे आकर के देखने लगे कहीं वो दांत से खाया तो नहीं, इसको काटा तो नहीं है, कुछ नहीं किया। देखे सब ठीक है, सब हृदय से मिलने लगे, देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगे, और आपस में दोनों भाई लगे कहने, अरे हम नहीं जानते थे कि ये राक्षस है, ये है वो, अरे सब पता है कि नहीं जानते थे। तो हमको तो पता नहीं था, ऐसे नहीं था, ऐसे ऐसे हम लोग बच जाते हैं। नंद बाबा ने बहुत पुण्य किया है, इसी से हम लोग बच जाते हैं। हमारी माँ ने बहुत पुण्य किया है, किया है, किया है। इस तरह से कहने लगे। और उस दिन से अब सिक्योरिटी तेज हो गई कि अपने साथियों को भी देखने लगे कि सही में वो साथी है कि कहीं कोई नया प्रलंब तो नहीं आ गया। इस तरह से तो ऐसे तो कथाएं बहुत हैं। एक से एक दैत्य प्रलंब बक, बक बक के रूप में गया था, और यह अघासुर का भाई था, यह भी डायरेक्ट दैत्य है राक्षस। और बकी पूतना इसकी सगी बहन है खास। ये तीन बहुत ट्रेंड थे और तीनों कृष्ण को मारने गए, लेकिन तीनों को भगवान ने उत्तम गति दे दिया। वृंदावन में गए लेकिन वहां से लौटे नहीं। जद गत्वा न निवर्तन्ते तद धर्म परम मम। फिर मथुरा में रिपोर्ट भी नहीं देने आए कि ये हुए। कंस भेजता था सिखा सिखा करके, उसको मारो ये करो। ले ये बगुला पक्षी के रूप में गया था, इसकी चोंच फाड़ दिया भगवान ने। ये भगवान को खा गया था एक बार, लेकिन उसके कंठ में भगवान जलने लगे अग्नि की तरह। अच्छा, चारुण यह पहलवान था, इसको मथुरा में पहुंचकर भगवान ने मारा। त्रिणावर्त यह चक्रवात के रूप में कृष्ण का हरण किया था, इसको मारा गोकुल में भगवान ने, महाबल में। महासन, महासन इन सब का विशेषण हो सकता है, इन सब का और बाद में भी। महासन का अर्थ है असन का अर्थ है भोजन, और महा का अर्थ है बहुत भारी, बहुत ज्यादा खाने वाले थे। और बहुत ज्यादा से केवल अमाउंट नहीं, गाय मिले गाय खा जाते थे, आदमी खा जाते थे, जो भी आप देखे। आप सुने हैं कि बकासुर जब बगुला बन करके ऐसे बैठा था, पर्वत शिखर के समान लगता था कि संगमरमर का कोई पर्वत टूट करके बैठा है सरोवर के तट पर। वो तो सब बच्चे पानी पिला रहे थे, गौओं को, स्वयं भी पानी पी रहे थे, और कह रहे थे कितना सुंदर पर्वत शिला गिरा है, देखो बगुला के आकार का है। आपस में बात करते थे, बिल्कुल बग के आकार का है। तो सब बात कर रहे थे तो और किसी को कुछ नहीं करना चाहता था, वो सोचता था कृष्ण को खा जाए, राक्षस न सीधे खा जाते। तो कृष्ण देखने के लिए निकट आए कि वास्तव में बिल्कुल बगुला है, बगुला है कि ये वास्तव में प्रस्तर खंड है। तो भगवान आकर के ऐसे देख रहे थे, तब तक चोंच को फाड़ करके बाह करके और गप से खा गया भगवान। तो खा गया तब तो बच्चे लगे रोने, निष्प्राण पृथ्वी पर गिर गए, देवता हाहाकार करने लगे। लेकिन भगवान को जय खाया तो जा करके गले में अग्नि की तरह, एक तप्त लोहा की तरह जलने लगे, जलने लगे। जब जलने लगे तो तुरंत ही बमन कर दिया कृष्ण का। देखा बाप रे बाप, ये तो आग है। वैसे आग का एक नाम है कृष्ण वर्तमा। हरिश्वरी जी ने बहुत सुंदर उपेक्षा किया, आग का नाम ही है कृष्ण वर्तमा। और कृष्ण वर्तमा का एक अर्थ है कृष्ण का पोजीशन, कृष्ण का पथ, कृष्ण का रास्ता, कृष्ण की का स्वरूप। तो कृष्ण आग में है ही, मुखाद अग्नि रजायत, भगवान के मुख से अग्नि का जन्म हुआ है, सारा संपूर्ण अग्नि भगवान में है। तो उस समय अग्नि तत्व को भगवान ने अगर बढ़ा दिया, जलने लगे, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सब कंठ ऐसा जलने लगा कि भीतर ले जाने में डर गया कि अब भीतर ले जाऊंगा तो वहां तो सब फोड़ा पड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, मर जाऊंगा, इसलिए बाहर बमन कर दिया। बमन करके तब चोंच से मारना चाहा, बड़ी बड़ी चोंच थी उससे प्रहार किया, भगवान चोंच को पकड़ लिए और फाड़ दिए, एक चोंच को पैर से दबा लिए और एक को ऐसे खींच दिए, दो टुकड़ा फेंक दिए। तो मैं ये कह रहा था कि ये सब महासन थे, आदमी खा जाते थे, बच्चे खा जाते थे, गऊ जो भी मिले बस खा जाते थे, इसको भी महासन कहते। अथवा महासन का अर्थ है अजगर, अजगर बहुत ज्यादा खाते हैं, ऐसे पड़े भी रहते हैं नहीं मिलने पर, लेकिन जब मिलता है तो बकरा भेड़ा आदमी सब खा जाते, तो महासन कहा जाता है अजगर को। तो अघासुर अजगर बन करके ब्रज में गया था, सबको खा गया था, लेकिन यह अभी मर गया। इसके गले में तो भगवान अपना शरीर इतना बढ़ाए कि उसकी सांसें रुक गई, आंखें निकल आई और तड़फड़ा करके इसका पेट फट गया। पेट फट गया तो जितने बच्चों को खाया था सब बच्चे और बछड़े निकल आए बाहर आए, लेकिन का कुछ नहीं हुआ। इसके बाद भगवान निकले, अद्भुत लीला भगवान किए हैं ब्रज में। महासन मुष्टिक यह भी एक पहलवान था जिसका वध श्री बलराम जी ने किया मथुरा में। और अरिष्ट यह वृषभ के रूप में ब्रज में गया था, बैल के रूप में। दूध यह तो सदा बानर के रूप में रहता, बानर ही था, दैत्य नहीं था, लेकिन कर्म से दैत्य हो गया था। इसका भी वध श्री बलराम जी ने किया बाद में। बहुत बदमाश बानर था, बहुत बलवान था। जब इसने सुना कि कृष्ण कंस का वध कर दिया है और आकर के द्वारका में रह रहा है, तो पूरा गुजरात प्रदेश को तबाह कर दिया, जितने वृक्ष थे उखाड़ करके फेंक दिया और इतना पानी उछाला कि लगा कि अब द्वारका डूब जाएगी। फिर भी इसको माफ कर रहे थे बलराम जी, लेकिन बलराम जी एक बार रायवतक पर्वत पर विहार कर रहे थे अपनी प्रेसियों के साथ घूम रहे थे, तो ये बलराम जी को लगा चिड़ाने, बहुत बदमाशी कर रहा था। बलराम जी माफ कर रहे थे, ध्यान नहीं दे रहे थे, बानर है क्या मारे, और वो उनकी सेना में लड़ा भी था, भगवान राम की सेना में था, इसलिए भगवान माफ कर रहे थे, लेकिन हद कर दिया। अंतिम गलती क्या किया कि आ करके श्री बलराम जी की प्रेयसियों के कपड़े के छोर को, साड़ी के छोर को फाड़ दिया, इतना तक किया, और श्री बलराम जी का जो मधु पात्र था उसको ले जाकर फोड़ दिया, और बहुत से मुंह बनाता था, गुप्तांग दिखाता था, बहुत गलत कार्य किए। तब श्री बलराम जी सोचे कि चाहे कितना भी सेवा किया है, अब इसको मारना जरूरी, और उठाए हल। तो उनके संकल्प से करोड़ों योजन बढ़ सकता है, जिन्होंने संकल्प किया हल से उसको पकड़ लिया और पकड़ करके मूसल से, ये कहीं मूसल मारे बस वहीं खत्म हो, भगवान को ज्यादा जोर से मारने की जरूरत नहीं पड़ी, इतना बलवान बानर लेकिन एक मुसल नहीं सह सके, खत्म। पहले बलराम जी ने नहीं मारा, वो जब उसको ललकारा उन्होंने तो वृक्ष उखाड़ उखाड़ करके लड़ रहा था, पत्थर मार रहा था बलराम जी पर, सब मारा था, लेकिन अंत में उन्होंने हल से पकड़ कर कर मार दिया, खत्म। मुष्टिका रिष्ट द्विद पूतना के सीधे नुकई, पूतना सभी लोग जानते हैं केसी, ये अश्व के रूप में घोड़े के रूप में गया था, धेनु ये गधा के रूप में गया था, इसको भी बलराम जी ने मारा। अन्य चासुर भूपाल है, सुखदेव गोस्वामी कहता अब हम कितना कितना नाम बतावे, और भी बहुत से असुर भूपाल, असुर राजा इसको सहयोग दे रहे थे, जिनमें मुख्य थे बाण और भौम। बाण रामाणी बलि महाराज का पुत्र था, ये भी बहुत बदमाश निकल गया था। इसको तो भगवान ने मारा जान से नहीं, लेकिन इसकी भुजाओं को काट दिया, केवल चार छोड़ दिया। अद्भुत अद्भुत कथा है, उसको बहुत बाह मुड़ गया था। बाहों के अभिमान में बड़ा उपद्रव करता था। चूंकि भगवान ने वर दिया था प्रहलाद महाराज को कि आपके कुल में किसी का अब मैं वध नहीं करूंगा, इसलिए भगवान ने बाणासुर का वध नहीं किया, केवल उसकी भुजाओं को काट कर छोड़ दिया। वो भी दो फालतू छोड़ दिए, चार भुजा आज भी बाणासुर को है। और भगवान शिव का भक्त था, इसलिए छोड़ दिया, माफ कर दिया। भूमि का पुत्र, उसका नाम था नरक। पता नहीं उसके गुरुजी ने नाम रखा था कि पिता ने रखा था, नाम था नरक। नरक नरकासुर कहते हैं। ऐसे भूमि का पुत्र था, इसीलिए उसको भौमासुर कहते। भौम ये लोग मुख्य थे। और श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बलि। कंस स्वयं बहुत बड़ा बलवान था, जिसके पास बल हो उसको बलि कर, बलि बलि था, स्वयं बड़ा बलवान था। और ऊपर से सहारा मिल गया था ससुर का, दामाद था ही। ऐसे तो प्रत्येक ससुर अपने दामाद को मानता ही है, लेकिन जरा संध और ज्यादा मानता था अपने दामाद को। मागध है ये मगध देश का राजा, जरासंध हमेशा कंस को पोषित करता था, उसका पक्ष लेता था, चाहे कितना भी वो गलती करे लेकिन सहारा देता था। तो इन सब से युक्त होकर के जादवों पर अत्याचार करने लगा। इसका अर्थ है कि इन सब ने राय दिया था कि हाँ मारो मारो मारो, खत्म करो। कोई मना नहीं किया कि नहीं ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सभी राय दिए, सहायता दिए, वे सब लोग भाग गए। इनमें से जिन प्रदेशों में भागे जादव लोग, तो उनके नाम दिए गए हैं। आज तो नाम सब बदल गए हैं, कुछ के नाम रह गए, से कुरु पंचाल के कया। कुरु प्रदेश में कुरु महाराज का जो क्षेत्र था उधर कुछ चले गए, कुछ पंचाल में चले गए जहां द्रुपद महाराज का शासन था। के कयान कुछ मध्य प्रदेश में आ गए, और कुछ विदर्भ महाराष्ट्र साल्व यह भी मध्य प्रदेश में, और कुछ से विदेह जनकपुर के तरफ चले गए नेपाल में, कोसला में पे कुछ लखनऊ के तरफ अयोध्या के तरफ चले गए। इस तरह भाग गए जहां तक छिप गए, दिन बिताने लगे। लेकिन कुछ लोग अक्रूर प्रधान लोग बड़े ट्रिक से कंस के पास ही रहने लगे। एक तम अनुरुंधाना ज्ञाते अप्रयुपासते, तम अनुरुंधाना अनुवर्तमाना। कुछ लोग कंस का अनुवर्तन कर रहे थे, एक एक अर्थ के चित कुछ लोग। कुछ जादव कंस के पास ही रुक गए, जैसे अक्रूर जी, अक्रूर जी का परिवार और भी कुछ लोग थे। तो अक्रूर जी आदि जादव चाहते थे कि चाहे कुछ भी दुख हो, लेकिन भगवान का यहाँ पर अवतार होने वाला है, तो भगवान का दर्शन करेंगे, यह सुख प्राप्त करेंगे। अतः एक बार कंस की दासता स्वीकार करके, दुख सह करके भी यहीं रहे, यही ठीक है। कहाँ जाएंगे, भगवान तो मथुरा में अवतार लेने वाले हैं, तो हम कहाँ कहाँ भागें। तो उस राक्षस की, कंस की नौकरी कर रहे थे, लेकिन अपने स्वभाव से, अपने प्रभाव से कंस को कुछ बातों में अपने बस में कर लिए थे। जैसा बाद में कथा आती है, ये कथा हमने खडिया में कहा था, किस प्रकार कंस विश्वास करता था अक्रूर जी पर। वो कहा कि मेरा रथ ले जाइए और जाकर के कृष्ण बलराम दोनों को मथुरा लाइए, आपसे बढ़कर के मेरा हितैषी संसार में कोई नहीं। तो अक्रूर जी ने कह दिया कि अरे आप इतने नीतिज्ञ हैं, महान हैं, राजा हैं, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं। तो इस पर कहता है क्यों नहीं, अरे आप देखिए कि इंद्र की सहायता उपेंद्र करते हैं, इंद्र बड़ा है ना, लेकिन फिर भी विष्णु से सहायता लेते हैं। असुर होने के कारण भगवान विष्णु को कम कह रहा है इंद्र से, ये स्वभाव है असुरों। इंद्र उपेंद्र, तो उपेंद्र तो ऐसे ही कम पद हुआ ना, उप इंद्र जैसे कोई गृह मंत्री है कोई का उप गृह मंत्री, तो उप का अर्थ ही है न्यूनत्ववाचक है, तो उपेंद्र ऐसे ही छोटे हो गए इंद्र से। ये मूर्ख ये राक्षस ही नहीं जानता था कि इंद्र भगवान भक्त हैं उपेंद्र के। कहता जैसे देखिए समय पड़ने पर इंद्र जैसे समर्थ व्यक्ति भी उपेंद्र का आश्रय लेते हैं, और सब जगह अक्रूर जी सेना की जरूरत नहीं पड़ती है, सब जगह लड़ाई झगड़ा से काम नहीं होता है, बुद्धि चाहिए, और बुद्धि में आप हमसे बढ़ करके हैं किसी खास विषय में, सब विषय में आप बुद्धिमान नहीं हैं, लेकिन किसी किसी विषय में आपके पास हमसे ज्यादा बुद्धि है। अब देखिए